नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू हॉलनेस के साथ वार्ता कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में मतदान में 44% मतदान दर्ज किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज किसानों की समस्याओं का समाधान करने की सरकार की वचनबद्धता दोहराई। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर स्थिति स्थिर है लेकिन सामान्य नहीं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू हॉलनेस के साथ वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद हाउस पहुंचने पर डॉक्टर हॉलनेस का गर्मजोशी से स्वागत किया। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों के बीच अनेक समझौते ज्ञापनों और समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। डॉक्टर हॉलनेस की यह पहली भारत यात्रा है। जमैका के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मिलने का कार्यक्रम है। 4 दिन की यात्रा के दौरान वह व्यापार और उद्योग जगत के प्रमुख हस्तियों के साथ भी बातचीत करेंगे। उनका कल वाराणसी जाने का कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जमैका के प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ने के साथ साथ कई अन्य प्रमुख क्षेत्रों में साझेदारी भी मजबूत होगी। भारत जमैका के विकास परियोजनाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में जमैका के किस्टन कस्बे में ग्रामीण विकास परियोजना के लिए $10,00,000 की सहायता की घोषणा की थी। यह पहल जमैका के सतत विकास के प्रति भारत की वचनबद्धता को प्रदर्शित करती है। व्यापार और निवेश के मोर्चे पर दोनों देशों के अच्छे प्रगति की है। भारत और जमैका के बीच व्यापार $6,08,00,000 तक पहुंच गया है और वहां भारत का निर्यात निरंतर बढ़ रहा है। भारतीय कंपनियों की जमैका में विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और BPO सेक्टरों में पहुंच बढ़ी है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के मतदान में 44% मतदान दर्ज किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई है। 7 जिलों के सभी 40 विधानसभा सीटों के 5,008 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हुआ। मतदान वाले जिलों में जम्मू क्षेत्र के जम्मू, कठुआ और सांबा तथा कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा, बारामूला और बंदीपुरा जिले शामिल है। चुनाव आयोग के पारदर्शी तथा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग तथा पेयजल, बिजली, शौचालय, दिव्यांगजनों के लिए रैंप, व्हीलचेयर, फर्नीचर और सेड की सुविधा की गई है। विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों के लिए 18 और 25 सितंबर को मतदान हुआ था। मतों की गिनती 8 अक्टूबर को की जाएगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की 30 तारीख नजदीक आने के साथ ही प्रचार अभियान तेज हो गया है। राज्य की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपने पार्टी उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने के लिए कई रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फरीदाबाद के पास पलवल जिले के गतपुरी टोल प्लाजा पर एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती इस महीने की 8 तारीख को होगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज किसानों की समस्याओं का समाधान करने की सरकार की वचनबद्धता दोहराई। नई दिल्ली में किसान संगठनों और किसानों के साथ हुई दूसरी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस बैठक के दौरान उर्वरक के अधिक उपयोग सहित बीज और कीटनाशकों की उपलब्धता को लेकर विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई। आकाशवाणी से बातचीत में किसान संगठन किसान उन्नयन स्वतंत्रता के संरक्षक के सदस्य आचार्य रामगोपाल दीक्षित ने कहा कि सरकार के साथ बातचीत उपयोगी रही है। श्री चौहान ने आश्वस्त किया कि उनकी सभी समस्याओं का जल्द समाधान होगा। इसराइल द्वारा दक्षिण लेबनान में जमीनी हमला शुरू होने से तनाव बढ़ गया है। इसराइली डिफेंस फोर्स IDF ने उत्तरी इसराइल के निवासियों पर तत्काल खतरों का हवाला देते हुए सीमा के निकट हिजबुल्ला के ठिकानों पर सीमित और लक्षित हमले शुरू किए हैं। एक सुनियोजित रणनीति के अनुसार इसराइल के ऑपरेशन नॉर्दर्न एरा अभियान के तहत इन हमलों की स्वीकृति राजनीतिक नेताओं ने दी है। IDF ने खबर दी है कि सेना इन हमलों की तैयारी में कई महीने से प्रशिक्षण ले रही है। सेना को इजरायली वायुसेना और तोपखानों से समर्थन मिल रहा है। सेना इन क्षेत्रों में सैन्य ठिकानों पर सुनियोजित हमला कर रही है। यह संघर्ष कई मोर्चों पर फैल चुका है। इजरायल द्वारा स्थानीय निवासियों को खाली करने के आदेश जारी किए जाने के बाद यह कई सीमावर्ती ठिकानों को निशाना बनाकर बेरूत से दक्षिणी उपनगर पर और अधिक हवाई हमले शुरू कर चुका है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सिर्फ सोमवार को इन हमलों में लेबनान में कम से कम 95 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच इसराइल और हमास ने लेबनान में हमास के प्रमुख फतेह शरीफ अबू अल अमीन की मौत की पुष्टि की है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LSC परिस्थिति स्थिर है लेकिन सामान्य नहीं। नई दिल्ली में आज चाणक्य रक्षा संवाद पर सेना प्रमुख ने कहा कि भारत मई 2020 में सैन्य गतिविधि शुरू होने से पहले अप्रैल 2020 की स्थिति बहाल करना चाहता है। उन्होंने कहा कि इसमें जमीन पर नियंत्रण, बर्फ जोन और गश्ती के संदर्भ से पहले जो स्थिति थी उन स्थिति को बहाल करना शामिल होगा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि जब तक पहले की स्थिति बहाल नहीं हो जाती तब तक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति संवेदनशील रहेगी। भारत किसी तरह की हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि गरीबों और छोटे व्यवसायियों के लिए बैंक से ऋण लेना अब आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह जनधन योजना के कारण संभव हो सका है। उन्होंने आज ईटानगर में ऋण आउटरीच कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बैंकों की लंबी कागजी कार्रवाई या बिना किसी गिरवी के लोगों के लिए इन योजना की सुविधा का लाभ भी सुनिश्चित किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि ऋण आउटरीच कार्यक्रम सरकार को कल्याणकारी योजनाओं से आम लोगों को लाभ पहुंचाने की समीक्षा करने योग्य बनाती है। श्रीमती सीतारमण ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत 160 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से 7000 किलोमीटर लंबी वायुवीर विजेता कार रैली को रवाना किया। इस कार रैली को भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस महीने की 8 तारीख को लद्दाख के थाइसवेस से अरुणाचल प्रदेश के तवांग के लिए औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाई जाएगी। रक्षा मंत्री ने कहा है कि वायुवीर विजेता कार रैली वायुसेना के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ युवाओं को प्रेरणा भी देगी। उन्होंने कहा कि वायुसेना के अधिकारी रैली के बीच में छात्रों के साथ बातचीत करेंगे जिससे सशस्त्र सेनाओं के प्रति छात्रों का आकर्षण बढ़ेगा। श्री सिंह ने युवाओं से आग्रह किया कि वे सशस्त्र सेना का हिस्सा बनकर सम्मान, गौरव और राष्ट्रभक्ति का जीवन अपनाएं। जापान में देश की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP के नेता शिगेरु इशिबा प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण करने जा रहे हैं। बाद में आज वे अपने नए मंत्रिमंडल की घोषणा करेंगे। इस बीच आज सुबह जापान में मौजूदा प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने 3 वर्ष के कार्यकाल के बाद अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। आज सुबह नए मंत्रिमंडल की नियुक्ति से पहले मौजूदा मंत्रिमंडल की बैठक में किशिदा के मंत्रियों ने एक साथ इस्तीफा सौंपा। श्री किशिदा 4 अक्टूबर 2021 को जापान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए थे। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।